एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार और ज्ञान गोष्ठी में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि एक पूरी खोज है, मोहनदास करमचंद गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग।
जी नमस्कार, बिल्कुल सही कहा आपने। ये किताब जो पहले 1925 से 1929 के बीच उनकी अपने जर्नल नवजीवन में धीरे धीरे छपी थी, किसी संत की सिद्धियों का गुणगान नहीं है।
हाँ, ये बात बहुत जरूरी है।
बिल्कुल, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे एक आम इंसान सच की तलाश में, मतलब सत्य की तलाश में लगातार कोशिश करता रहा। और ये सफर आसान नहीं था, इसमें काफी तकलीफें भी थी।
और इसी इंसान को दुनिया ने बाद में महात्मा और बापू कहा। वो एक वकील थे, उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ने वाले राष्ट्रवादी, एक राजनीतिक विचारक, आध्यात्मिक गुरु भी और समाज सुधारक भी। इस किताब की सबसे अनोखी बात शायद यही है कि ये उनके जीवन को एक लैब की तरह देखती है।
एक प्रयोगशाला जहां उनके सारे काम, चाहे वो निजी हो या सार्वजनिक, वो असल में सत्य को समझने के, उसको परखने के प्रयोग थे। ये बात वो खुद कहते हैं।
और इसीलिए ये आज भी इतनी प्रासंगिक लगती है ना, उनकी विनम्रता, अपनी कमजोरियों को मानना।
बिल्कुल, वो बिना झिझक अपनी गलतियां मानते हैं। और उनका ये मानना कि भाई राजनीतिक आजादी चाहिए तो उसका रास्ता आपके अपने, मतलब व्यक्तिगत और आध्यात्मिक मुक्ति से होकर गुजरता है, ये एक बहुत बड़ी बात है।
ये किताब उनके बचपन से लेकर 1921 तक के समय को कवर करती है।
जी, जब तक वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक बड़े नेता बन चुके थे। तो चलिए इस सफर को शुरू से समझने की कोशिश करते हैं, उनके शुरुआती सालों से।
हाँ बिल्कुल, तो शुरुआत करते हैं उनके बचपन और उन फॉर्मेटिव प्रभावों से जिन्होंने मोहनदास को गढ़ा। ये समय है 1869 से 1888 का। जन्म पोरबंदर गुजरात में, पिता करमचंद दीवान थे। सुना है काफी सत्यनिष्ठ थे पर थोड़े गुस्सैल भी।
हाँ, सत्यनिष्ठ और थोड़े कठोर मिजाज के थे, लेकिन माँ पुतलीबाई का असर शायद ज्यादा गहरा था। वो बहुत ज्यादा धार्मिक थीं।
अच्छा,
मतलब पूजा पाठ, व्रत उपवास, ईश्वर में गहरी आस्था, ये सब मोहनदास के बचपन का हिस्सा था। खुद गांधी जी लिखते हैं कि वो कोई बहुत होशियार छात्र नहीं थे, औसत थे, बल्कि काफी शर्मीले, डरपोक किस्म के थे।
डरपोक जैसे?
अरे, भूत से डरना, सांप से डरना, अंधेरे से डरना, ये सब था। और इसी उम्र में, मतलब टीनेज में, कुछ नैतिक संघर्ष भी हुए। 13 साल की कच्ची उम्र में शादी हो गई कस्तूरबाई से। फिर दोस्तों के बहकावे में आकर मांस खा लिया, जबकि परिवार वैष्णव था। भाई का थोड़ा कर्ज चुकाने के लिए घर से थोड़ी चोरी कर ली, सिगरेट पी ली, ये सब उन्होंने किया।
लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हर गलती के बाद उन्हें बहुत पछतावा होता था, एक अपराध बोध।
बिल्कुल, और हिम्मत करके उन्होंने ये सब अपने पिता को बताया। वो किस्सा तो बहुत मशहूर है। पिता ने कुछ कहा नहीं, डांटा नहीं, बस उनकी आंखों में आंसू आ गए।
ये बहुत मार्मिक है।
और गांधी जी के लिए ये अहिंसा और सत्य का पहला सीधा सबक था। शायद यहीं से उनके मन में ये बात बैठ गई कि सच बोलने में और अपनी गलती मानने में कितनी ताकत है।
हाँ, ये कह सकते हैं कि उनके प्रयोगों की नींव शायद यहीं पड़नी शुरू हुई।
बिल्कुल, एक और घटना थी जिसने उन्हें बहुत झकझोरा। जब वो 16 साल के थे, उनके पिता गुजर गए, और जिस वक्त पिता की मृत्यु हुई वो अपनी पत्नी के साथ थे। इस बात का अपराध बोध, एक शर्म, वो उन्हें जिंदगी भर सालती रही। शायद इसी अनुभव ने बाद में उन्हें आत्मसंयम और फिर ब्रह्मचर्य जैसे कठिन व्रत की तरफ मोड़ा।
तो ये थे शुरुआती साल। अब आगे बढ़ते हैं उनके अगले पड़ाव पर, शिक्षा, खुद की खोज और संघर्ष का दौर। यह है 1888 से 1914।
वो 1888 में कानून पढ़ने लंदन गए। जी, और ये उस जमाने में एक बड़ी बात थी। समुद्र पार जाना, खासकर उनके बनिया समुदाय में, आसान नहीं था। जाति से बाहर निकाले जाने का डर था। तो ये परंपरा के खिलाफ उनका पहला बड़ा कदम था, एक तरह का विद्रोह।
और लंदन का अनुभव कैसा रहा उनके लिए? सुना है शुरू में वो पूरी तरह अंग्रेज बनना चाहते थे।
हाँ बिल्कुल, शुरू में तो लगा कि भाई यहाँ रहना है तो इन्हीं जैसा बनना पड़ेगा। तो महंगे सूट सिलवाए, नाचने की क्लास ली, वायलेंस सीखने की कोशिश की, मतलब एक परफेक्ट अंग्रेज जेंटलमैन बनने का पूरा प्रयास।
हल्की हंसी।
लेकिन जल्दी उन्हें लगा कि ये सब दिखावा है, बेकार है, और वो वापस सादगी की तरफ लौट आए। लेकिन मजे की बात यह है कि लंदन में ही उनका परिचय भारतीय दर्शन से और गहरा हुआ।
अच्छा, ये कैसे?
वहीं उन्होंने पहली बार सर एडविन आर्नॉल्ड का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा भगवद गीता का। वो किताब तो जैसे उनके जीवन का आधार बन गई। वो कहते थे कि ये आचरण के लिए अचूक मार्गदर्शक है। फिर ईसा मसीह के सर्मन ऑन द माउंट पहाड़ी उपदेश ने भी उन्हें बहुत प्रभावित किया, खासकर उसमें जो अहिंसा का संदेश था। और यहीं उन्होंने शाकाहार को सिर्फ एक पारिवारिक परंपरा नहीं बल्कि एक नैतिक सिद्धांत के तौर पर अपनाया।
तो लंदन में ही उनकी सोच को एक दिशा मिली।
हाँ, और उन्हें लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी जैसी संस्थाओं से जुड़कर लोगों को संगठित करने, अपनी बात रखने, लिखने पढ़ने का पहला अनुभव भी मिला।
लेकिन जब 1891 में वो बैरिस्टर बनकर भारत लौटे तो यहाँ वकालत में कामयाब नहीं हुए।
नहीं, बिल्कुल नहीं। वही शर्मीलापन आड़े आया। कोर्ट में खड़े होकर बोलना उनके लिए बहुत मुश्किल था, तो बम्बई और राजकोट दोनों जगह कोशिश की पर बात बनी नहीं।
एक तरह से नाकामयाब वकील थे शुरू में।
हाँ, कह सकते हैं। तभी 1893 में उन्हें दक्षिण अफ्रीका की एक भारतीय फर्म से एक साल के कानूनी काम का ऑफर मिला। उन्हें लगा चलो यहाँ से निकलें, कुछ बदलाव आएगा। वो चले गए।
और ये एक साल कब 20 साल में बदल गया पता ही नहीं चला।
बिल्कुल, दक्षिण अफ्रीका ने ही मोहनदास को महात्मा बनने की राह पर डाला। वहां पहुंचते ही कुछ दिनों बाद वो मशहूर घटना हुई पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर। फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। क्यों? क्योंकि वो कुली थे, मतलब भारतीय थे, गोरे नहीं थे।
वो रात, वो अपमान, सोचकर भी सहरन होती है। क्या वही पल था जिसने सब कुछ बदल दिया?
हाँ, वो उस ठंडी रात में स्टेशन पर बैठे कांप रहे थे और सोच रहे थे क्या करें, डरकर वापस भारत चले जाएं या यहीं रहकर इस अन्याय, इस रंगभेद की गहरी बीमारी से लड़ें। उन्होंने लड़ने का फैसला किया
और यहीं से एक निजी अपमान एक सार्वजनिक मिशन बन गया।
बिल्कुल, अगले 20 साल दक्षिण अफ्रीका उनकी सत्य की प्रयोगशाला बन गया। उन्होंने वहां देखा कि भारतीयों के साथ कैसा सुलूक होता है, उन्हें कैसे जलील किया जाता है, और फिर उन्होंने काम शुरू किया।
क्या किया उन्होंने?
सबसे पहले तो भारतीय समुदाय को जगाया, उन्हें हिम्मत दी, उन्हें जोड़ा। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस बनाई, फिर इंडियन ओपिनियन नाम का अखबार शुरू किया ताकि लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बता सकें।
और सबसे बड़ी चीज सत्याग्रह।
हाँ, सत्याग्रह यानी सत्य बल या सत्य का आग्रह। यहीं इसका विकास हुआ और पहला प्रयोग भी। ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ चुपचाप बैठ जाना या निष्क्रिय विरोध नहीं था।
तो फिर क्या था ये?
ये बहुत सक्रिय नैतिक बल पर आधारित लड़ाई थी। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, लेकिन अहिंसा से। सविनय अवज्ञा, मतलब गलत कानून को विनम्रता से न मानना और उसके नतीजे भुगतने को तैयार रहना।
जैसे वो रजिस्ट्रेशन एक्ट वाला मामला।
बिल्कुल, जब सरकार ने कानून बनाया कि हर भारतीय को रजिस्टर करवाना होगा और हर वक्त पहचान पत्र साथ रखना होगा, तो उन्होंने इसका जबरदस्त विरोध किया। हजारों लोगों ने उनके साथ मार्च किए, रजिस्ट्रेशन कार्ड जला दिए और खुशी खुशी जेल गए। मकसद था खुद कष्ट सहकर सामने वाले का दिल बदलना, सच्चाई को उजागर करना।
और इसी दौरान उनकी अपनी जिंदगी भी पूरी तरह बदल रही थी।
हाँ बिल्कुल, उन्होंने फीनिक्स सेटलमेंट और फिर टॉलस्टॉय फार्म जैसे आश्रम बनाए। यहाँ सब लोग मिलकर रहते थे, सादा जीवन जीते थे, खेती करते थे, अपना काम खुद करते थे। आत्मनिर्भरता, शारीरिक श्रम, सादगी, ये सब उनके जीवन का हिस्सा बन गया।
और 1906 में ब्रह्मचार्य का व्रत।
जी, उन्होंने महसूस किया कि अगर पूरी तरह से जनसेवा में लगना है तो अपनी ऊर्जा को केंद्रित करना होगा, तो उन्होंने ब्रह्मचर्य का आजीवन व्रत ले लिया। जब वो 1914 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो वो सिर्फ एक वकील नहीं थे, वो एक परखे हुए नेता थे, एक महात्मा थे जिनके पास अन्याय से लड़ने का एक शक्तिशाली अहिंसक तरीका था, सत्याग्रह।
किताब का अगला हिस्सा भारत में उनकी वापसी और फिर यहाँ उनकी शुरुआती कामयाबियों पर है, 1915 से 1921 तक।
1915 में जब वो भारत आए तो उनकी शोहरत यहाँ पहुंच चुकी थी। हाँ, दक्षिण अफ्रीका के उनके काम की वजह से लोगों ने जानने लगे थे। उनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने सलाह दी कि अभी सीधे राजनीति में मत कूदो, पहले एक साल पूरे भारत घूमो, देश को समझो, लोगों को जानो।
और उन्होंने ये सलाह मानी।
जी बिल्कुल, और उस एक साल की यात्रा ने उनकी आंखें खोल दी। उन्होंने भारत की गरीबी देखी, छुआछूत का घिनौना रूप देखा, अंग्रेजी राज का दमन देखा। इस अनुभव ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। इसके बाद ही उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे अपना आश्रम स्थापित किया।
और फिर शुरू हुए भारत में उनके पहले बड़े सत्याग्रह, जिनका जिक्र आत्मकथा में है।
हाँ, तीन बड़े शुरुआती सत्याग्रह। पहला 1917 में बिहार के चंपारण में। वहां नील की खेती करने वाले किसानों पर अंग्रेज बागान मालिक बहुत जुल्म करते थे। गांधी जी वहां गए, किसानों की बात सुनी और सत्याग्रह किया। सरकार को झुकना पड़ा।
ये उनकी भारत में पहली बड़ी जीत थी।
बिल्कुल। फिर 1918 में अहमदाबाद में, वहां कपड़ा मिल मजदूरों और मालिकों के बीच विवाद था। गांधी जी ने मजदूरों का साथ दिया और पहली बार भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया, उसमें भी सफलता मिली।
और तीसरा खेड़ा में?
हाँ, 1918 में ही गुजरात के खेड़ा जिले में। फसल खराब हो गई थी पर सरकार लगान माफ करने को तैयार नहीं थी। गांधी जी ने किसानों को लगान न देने का आह्वान किया। काफी संघर्ष के बाद वहां भी किसानों की मांगें मानी गईं। इन तीनों सत्याग्रहों ने गांधी जी को पूरे भारत में पहचान दिला दी। वो आम लोगों के नेता बन गए।
और किताब खत्म होती है 1920-21 के असहयोग आंदोलन के शुरू होने के साथ।
जी, 1919 में जलियांवाला बाग का भयंकर हत्याकांड हुआ। फिर रॉलेट एक्ट जैसे काले कानून आए। इसके जवाब में गांधी जी ने पूरे देश से अपील की, अंग्रेजी सरकार से हर तरह का सहयोग बंद कर दो।
मतलब?
क्या क्या बंद करने को कहा? सरकारी नौकरियां छोड़ो, बच्चे सरकारी स्कूल से हटा लो, वकील अदालत जाना बंद कर दें, अंग्रेजों की दी हुई उपाधियां लौटा दो, विदेशी कपड़ों की होली जलाओ। ये बहुत बड़ा कदम था। आजादी की लड़ाई में ये पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें पूरा देश, आम जनता शामिल हुई। आत्मकथा यहीं 1921 में इस बड़े आंदोलन के बीच में ही समाप्त हो जाती है।
तो ये तो हुई उनकी यात्रा। अब जरा उनके मूल दर्शन, उनके मूल्यों पर बात करते हैं। ऐसा लगता है कि सत्य ही उनके जीवन का, उनके हर काम का केंद्र था।
बिल्कुल, सत्य सत्य। उनके लिए ये सिर्फ सच बोलना नहीं था, ये परम यथार्थ था, वो शक्ति जो दुनिया को चलाती है। पहले वो कहते थे ईश्वर सत्य है।
हाँ।
लेकिन बाद में उन्होंने इसे और गहरा किया। उन्होंने कहा सत्य ही ईश्वर है। ये बहुत क्रांतिकारी बात थी। इसका मतलब था कि आपको सत्य की खोज के लिए किसी खास भगवान को मानने की जरूरत नहीं है। आप वैज्ञानिक हों, कलाकार हों, समाज सेवक हों, अगर आप ईमानदारी से सच्चाई की तलाश कर रहे हैं तो आप ईश्वर की ही पूजा कर रहे हैं।
वाह।
उनके सारे प्रयोग इसी सत्य तक पहुंचने के रास्ते थे।
और इस सत्य तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ एक था, अहिंसा।
केवल एक, अहिंसा। गांधी जी का मानना था कि हिंसा हमेशा झूठ का सहारा लेती है, सच को दबाने के लिए, मिटाने के लिए। अहिंसा उनके लिए डरपोक लोगों की चीज नहीं थी, बल्कि ये सबसे बड़ा गुण था, एक सक्रिय ताकत जिसके लिए हिम्मत चाहिए, आत्मनियंत्रण चाहिए।
और अहिंसा का मतलब सिर्फ किसी को मारना पीटना नहीं था।
नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब था मन से भी हिंसा को निकालना, गुस्सा, नफरत, बदले की भावना, किसी के बारे में बुला न सोचना भी अहिंसा का हिस्सा था।
उनके दर्शन में ब्रह्मचर्य का भी बहुत महत्व है। इसे वो इतना जरूरी क्यों मानते थे?
ब्रह्मचर्य यानी अपनी इंद्रियों पर, खासकर यौनिच्छा पर पूरा काबू रखना। गांधी जी मानते थे कि ये आध्यात्मिक विकास और जनसेवा के लिए बहुत जरूरी है। उनका मानना था कि ये जो जीवन ऊर्जा है, इसे बचाकर रखने से मन एकाग्र होता है, संकल्प शक्ति बढ़ती है और रूहानी ताकत मिलती है।
तो 1906 का उनका व्रत सिर्फ एक निजी फैसला नहीं था?
नहीं, ये उनके सार्वजनिक जीवन को पूरी तरह समर्पित करने का एक बड़ा प्रयोग था।
एक और शब्द है सर्वोदय।
हाँ।
इसका क्या मतलब है?
ये विचार उन्हें जॉन रस्किन की किताब अनटू दिस लास्ट से मिला था। सर्वोदय मतलब सबका उदय, सबका भला, खासतौर पे समाज के सबसे आखिरी पायदान पर खड़े इंसान का, सबसे कमजोर इंसान का भला।
अच्छा।
इसी सोच ने उन्हें छुआछूत के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। वो दलितों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान कहते थे, और इसी सोच से गांव की आत्मनिर्भरता, जिसे वो स्वराज कहते थे, उस पर उनका जोर आया।
तो उनकी असली प्रेरणा क्या थी? क्या वो सिर्फ राजनीतिक आजादी चाहते थे?
नहीं, उनकी सबसे गहरी, सबसे पहली प्रेरणा थी मोक्ष, मतलब रूहानी मुक्ति, ईश्वर का साक्षात्कार करना। उन्होंने अपनी आत्मकथा की शुरुआत में ही यह साफ लिखा है। उनके लिए राजनीति, समाज सेवा, ये सब साधन थे उस बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के।
और स्वराज का मतलब भी सिर्फ अंग्रेजों से आजादी नहीं था?
नहीं, स्वराज का मतलब था आत्मशासन, यानी देश का शासन तो हो ही, साथ में हर व्यक्ति का अपने मन पर, अपनी इच्छाओं पर भी शासन हो। एक ऐसा समाज बने जो नैतिक हो, आत्मनिर्भर हो, जहां सत्ता कुछ लोगों के हाथ में सीमित कर ना रह जाए। ये एक बहुत गहरी आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि थी।
जब मुश्किलें आती थीं तो उनका सामना करने का उनका तरीका भी बहुत अलग था। जैसे वो कहते थे दूसरा गाल आगे कर दो।
हाँ, मतलब हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देना, अन्याय का जवाब बदले से नहीं बल्कि खुद दुख सह कर देना। पीटर मैरिट्सबर्ग वाली घटना याद है ना? उन्होंने भागने की बजाय लड़ने का फैसला किया, पर अहिंसा से। उनका मानना था कि सत्याग्रही जब खुद कष्ट उठाता है तो जालिम का दिल पिघल सकता है और आम लोगों की सोई हुई आत्मा जाग सकती है। दूसरा तरीका था आत्मनिरीक्षण, जब भी कोई आंदोलन भटकता या उसमें हिंसा हो जाती तो वो दूसरों को दोष देने के बजाय पहले अपने अंदर झांकते थे।
वो उपवास रखते थे।
हाँ, आत्मशुद्धि के लिए उपवास रखते थे। मानते थे कि शायद मेरी ही साधना में कोई कमी रह गई है। ये बहुत बड़ी बात थी।
और तीसरा जाहिर है सत्याग्रह खुद।
बिल्कुल, ये उनका संघर्ष का पूरा एक सिस्टम था, सत्य और अहिंसा पर आधारित। पहले मुद्दे को ठीक से समझो, फिर बातचीत करो, लोगों को समझाओ और आखिरी हथियार के तौर पर अहिंसक सीधी कार्रवाई करो। और लक्ष्य हमेशा होता था सुलह, जीत हार नहीं।
गांधी जी के जीवन में कई मोड़ आए। अगर हमें तीन सबसे अहम, सबसे निर्णायक मोड़ चुनने हो तो वो कौन से होंगे?
ये मुश्किल सवाल है, पर कोशिश करते हैं। पहला तो मेरे ख्याल से वही पीटर मैरिट्सबर्ग में ट्रेन से फेंका जाना 1893 ही होगा।
हाँ, वो तो लगता ही है।
जैसा हमने कहा, वो सिर्फ एक अपमान नहीं था, वो एक डीक्लिक था, एक चिंगारी जिसने एक शर्मीले आम इंसान को सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले योद्धा में बदलना शुरू किया। उसने उन्हें उनका मिशन दिया।
ठीक है, दूसरा?
दूसरा शायद ब्रह्मचर्य का व्रत 1906। ये सुनने में बड़ा निजी लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा था। ये उनकी आत्मशुद्धि की पराकाष्ठा थी। ये उनका अपनी पूरी ऊर्जा को सिर्फ एक लक्ष्य, मानवता की सेवा में लगाने का संकल्प था।
और इसने उनकी छवि पर भी असर डाला होगा।
बहुत। इसने उन्हें खास तरह का नैतिक बल दिया। लोगों की नजर में उनका सम्मान और बढ़ा। ये उनके महात्मा बनने की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा था।
और तीसरा निर्णायक मोड़?
तीसरा मैं कहूंगा पहला बड़ा सत्याग्रह अभियान, ट्रांसवाल 1906 से 1908। वो जो एशियाई रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ था, जब हजारों भारतीयों ने उनके साथ मिलकर वो काला कानून ना मानने की शपथ ली और जेल जाने को तैयार हो गए।
अच्छा,
ये पहली बार था जब सत्याग्रह को इतने बड़े पैमाने पर एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया था। इसकी सफलता ने गांधीजी के तरीके को, उनकी अहिंसक लड़ाई को एक वैधता दी। इसने साबित किया कि ये तरीका काम करता है। यहीं से उन्हें वो आत्मविश्वास मिला जिससे वो बाद में इतने बड़े साम्राज्य को चुनौती दे सके।
इस पूरी कहानी से, उनके जीवन से हम आज क्या सीख सकते हैं? मतलब मानवीय सबक क्या है?
बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहली बात तो ये कि जो बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं, ईमानदारी, चरित्र, मजबूती, इनकी शुरुआत बहुत छोटी निजी चीजों से होती है। गांधी जी का अपने खाने पर ध्यान देना, अपने रोज के नियम मानना, सच बोलना, ये सब छोटी बातें नहीं थी। ये उस आत्म अनुशासन की बुनियाद थी जिसने उन्हें इतना बड़ा नेता बनाया। मतलब कैरेक्टर रोजमर्रा की छोटी छोटी कोशिशों से बनता है।
दूसरी बात जो मुझे बहुत छूती है वो है अपनी कमजोरियों को ईमानदारी से मानना। इस किताब में वो अपने डर, अपनी गलतियां, अपनी शर्म, सब कुछ खोलकर रख देते हैं।
हाँ, ये कमाल की बात है। ये दिखाता है कि सच्चा लीडर वो नहीं जो परफेक्ट होने का नाटक करे, बल्कि वो जो लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करे और उसे माने भी। उनकी ये ईमानदारी ही उनकी ताकत थी।
तीसरा सबक जो शायद आज की दुनिया के लिए सबसे जरूरी है, साधन और साध्य वाली बात, द मीन्स मस्ट जस्टिफाई द एंड।
बिल्कुल, कि अच्छे लक्ष्य को पाने के लिए आप गलत रास्ता नहीं अपना सकते, आप हिंसा करके शांति नहीं ला सकते, आप झूठ बोलकर सच स्थापित नहीं कर सकते, आप अन्याय करके न्याय नहीं पा सकते। ये गांधी जी का मूल मंत्र था।
चौथा, कि असली बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है।
हाँ, दुनिया को बदलना है, पहले खुद को बदलो, अपने गुस्से पर काबू पाओ, अपनी इच्छाओं को समझो, खुद को साफ रखो। आत्मशुद्धि, आत्मनियंत्रण, आत्मचिंतन, गांधी जी के लिए यही क्रांति के असली हथियार थे।
पांचवा, नैतिक अधिकार, लीडरशिप की असली करेंसी।
सही बात है, गांधी जी के पास ना फौज थी, ना कोई बड़ा सरकारी पद, फिर भी करोड़ों लोग उनके पीछे चले। क्यों? क्योंकि उनकी बात में, उनके जीवन में सच्चाई थी, लोग उन पर भरोसा करते थे। ये सिखाता है कि असली प्रभाव ईमानदारी और भरोसे से ही बनता है।
और एक और बात, सुनने की ताकत। भारत आने के बाद वो एक साल चुपचाप घूमते रहे, सुनते रहे।
हाँ, ये बहुत जरूरी है, सीधे कूद नहीं पड़े, पहले समझा, लोगों को सुना, उनकी तकलीफ महसूस की। ये धीरज, ये सहानुभूति, ये भी उनकी सफलता का एक राज था।
और आखिरी सबक शायद ये कि संघर्ष को अंत की तरह नहीं बल्कि बदलाव के एक मौके की तरह देखना।
बिल्कुल, गांधी जी का लक्ष्य दुश्मन को हराना नहीं बल्कि उसका दिल जीतना था, रिश्ते को बदलना था। लड़ाई एक मौका थी सच को सामने लाने का और एक बेहतर समाधान खोजने का।
आज का माहौल देखें तो इतनी ध्रुवीकरण है, इतनी गलत सूचनाएं हैं, गांधी जी के ये सिद्धांत बहुत प्रासंगिक लगते हैं।
सत्य पर उनका जोर, अहिंसा का उनका रास्ता, व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर उनका बल।
हाँ, बहुत प्रासंगिक। पोस्ट ट्रूथ के जमाने में सत्य की बात करना ही अपने आप में क्रांतिकारी है। बढ़ती हुई हिंसा के सामने अहिंसा का विकल्प रखना बहुत जरूरी है। और जिस तरह आजकल लोग अपनी छवि को लेकर ज्यादा परेशान रहते हैं, वहां निजी ईमानदारी की बात करना भी मायने रखता है।
बिल्कुल।
तो चलिए इस पूरी बातचीत को तीन मुख्य बातों में समेटते हैं, तीन अंतिम निष्कर्ष।
जी, पहली है एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि। गांधी जी की कहानी हमें सिखाती है कि हमारे जो सबसे गहरे जख्म होते हैं वो अक्सर हमारे अपने दिए होते हैं, जैसे पिता की मृत्यु के समय उनका वो अपराध बोध। लेकिन उन जख्मों को, अपनी शर्म को, अपनी कमियों को ईमानदारी से स्वीकार करना ही उनसे उभरने का पहला कदम है। गांधी जी का सबसे बड़ा साहस शायद अंग्रेजों से लड़ना नहीं बल्कि अपने अंदर के इन भूतों से लड़ना था। जब हम अपनी कमजोरियों को हिम्मत से स्वीकार करते हैं तो हमारा निजी दर्द सबके लिए एक सबक बन सकता है। उनकी ये वरलेचलिशकाइत, ये भेद्यता, ये खुलापन उनकी कमजोरी नहीं, ताकत थी।
दूसरी है एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि। गांधी जी का शायद सबसे क्रांतिकारी विचार था ये कहना कि सत्य ही ईश्वर है। ये सुनने में आसान लगता है, पर इसने धर्म और आस्था के परे हर इंसान के लिए सच्चाई की खोज का एक दरवाजा खोल दिया। आपको किसी भगवान में यकीन हो या ना हो, आप सत्य की खोज तो कर सकते हैं। ये आध्यात्मिकता को किसी खास पूजा पाठ या कर्मकांड से निकालकर जीवन के हर पहलू में सच्चाई और ईमानदारी की खोज बना देता है। उनका जीवन एक प्रयोग बन गया, उनकी राजनीति एक प्रयोगशाला। लक्ष्य किसी विश्वास को थोपना नहीं बल्कि ये खोजना था कि सच क्या है।
और तीसरी है एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि। दुनिया को बदलने की चाहत हम सब में होती है, लेकिन गांधी जी का सीधा सा संदेश था, शुरुआत खुद से करो, साधन ही अंत को गढ़ते हैं। आप गलत तरीकों से सही दुनिया नहीं बना सकते, हिंसक तरीकों से शांति नहीं ला सकते, अन्याय से न्याय नहीं पा सकते। बाहरी दुनिया में जो गड़बड़ दिखती है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर की गड़बड़ का ही आईना है। असली क्रांति हमेशा भीतर से शुरू होती है। आत्म सुधार ही समाज सुधार की पहली सीढ़ी है।
गांधी जी ने अपनी किताब का नाम रखा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है हमारा प्रयोग क्या है।
हाँ, जरूरी नहीं कि वो बहुत बड़ा हो। शायद आज सिर्फ एक छोटी सी कोशिश करें पूरी ईमानदारी से अपना काम करने की, या किसी की चुपचाप मदद करने की, या अपने किसी गुस्से वाले विचार पर थोड़ा काबू पाने की। गांधी जी ने दिखाया कि हजारों मील का सफर हो या एक राष्ट्र की आजादी, शुरुआत एक सच्चे कदम से ही होती है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।